एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी के इस अंक में सभी सुनने वालों का स्वागत है।
आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सदियों से कवियों, दार्शनिकों और हाँ, हम सबके लिए एक पहेली रहा है। प्यार, रोमांटिक प्रेम, ये होता क्या है, क्यों होता है और क्यों ये हमें इतना ऊपर उठा सकता है या फिर इतना नीचे गिरा सकता है।
बिल्कुल। और इसी गुत्थी को, या कहें इसके एक हिस्से को सुलझाने के लिए हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर हेलेन फिशर की किताब व्हाई वी लव की, मतलब हम प्यार क्यों करते हैं।
हाँ, ये किताब प्यार को सिर्फ एहसास या जज्बात के दायरे से निकालकर विज्ञान की कसौटी पे परखती है ना?
जी हाँ, और ये आज भी, मतलब 11 सितंबर 2025 को भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि प्यार तो हमेशा ही हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है।
सही कहा, लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इसे विज्ञान की नजर से देखने पर प्यार का वो जादू कम हो जाएगा?
या शायद ये हमें उसे बेहतर समझने में मदद करेगा, चाहे वो नए रिश्ते का जुनून हो या फिर दिल टूटने का दर्द।
हाँ, शायद यही।
मुझे लगता है यही इस किताब की खूबसूरती है। ये जादू को खत्म नहीं करती, बल्कि उसके पीछे जो अद्भुत बायोलॉजिकल मशीनरी है उसे उजागर करती है।
तो चलिए शुरुआत करते हैं लेखिका से। डॉक्टर हेलेन फिशर कौन है ये?
हाँ, तो डॉक्टर फिशर कोई आम लेखिका नहीं है, वो एक जानी मानी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है।
बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट
मतलब वो मानव व्यवहार को, खासकर प्यार और रिश्तों को, जीव विज्ञान और विकास के नज़रिए से स्टडी करती हैं। वो किन्जी इंस्टीट्यूट में सीनियर रिसर्च फेलो हैं और Match.com की मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रही हैं।
अच्छा, Match.com, तो मतलब वो अकादमिक रिसर्च के साथ साथ असल दुनिया की डेटिंग को भी समझती हैं।
बिल्कुल, उनका काम इसीलिए खास है क्योंकि उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी और सबसे जरूरी न्यूरोसाइंस यानी दिमाग के विज्ञान को मिला दिया।
न्यूरोसाइंस? हाँ, मैंने सुना है उन्होंने ब्रेन स्कैन का इस्तेमाल किया।
जी हाँ, वो पहली रिसर्चर्स में से थीं जिन्होंने प्यार में पड़े लोगों के दिमाग को स्कैन करने के लिए fMRI तकनीक का इस्तेमाल किया।
fMRI? अच्छा, वो मशीन जो दिखाती है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा कब ज्यादा काम कर रहा है?
वही, उन्होंने सचमुच प्यार में डूबे लोगों और यहां तक कि उन लोगों के भी दिमाग के अंदर झांका जिन्हें प्यार में रिजेक्शन मिला था। इससे प्यार का अध्ययन सिर्फ कविता और कहानियों से निकलकर एक ठोस वैज्ञानिक जमीन पर आ गया। ये बहुत बड़ा कदम था।
तो ये किताब असल में कहती क्या है? इसका सबसे मुख्य विचार क्या है?
अगर एक लाइन में कहूं तो फिशर का तर्क है कि रोमांटिक प्रेम सिर्फ एक भावना या मूड नहीं है, यह हमारे दिमाग की एक बुनियादी ड्राइव है।
ड्राइव?
हाँ, एक शक्तिशाली प्रेरणा, ठीक वैसे ही जैसे भूख या प्यास।
भूख या प्यास जैसी? ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब प्यार भी एक जरूरत है?
फिशर के अनुसार हाँ, एक ऐसी जरूरत जो विकास के क्रम में बनी। ये लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों में इसलिए विकसित हुई ताकि वो अपनी सारी मेटिंग एनर्जी, मतलब साथी खोजने और रिश्ता बनाने की जो ऊर्जा है, वो किसी एक ही इंसान पर फोकस कर सकें।
अच्छा, ताकि ध्यान ना भटके और जोड़ी बनाने में आसानी हो।
बिल्कुल, तो ये किताब प्यार के रहस्य को कम नहीं करती बल्कि उसे एक जैविक आधार देती है। ये उन दोनों विचारों को चुनौती देती है कि प्यार या तो कोई बस जादू है या फिर सिर्फ केमिकल लोचा।
हाँ, अक्सर लोग यही दो एक्सट्रीम बातें करते हैं।
सही कहा, फिशर बीच का रास्ता दिखाती हैं। वो विज्ञान बताती हैं पर प्यार की गहराई और ताकत को मानती भी हैं, और इसे समझाने के लिए वो तीन अलग अलग ब्रेन सिस्टम्स की बात करती हैं।
हाँ, ये तीन सिस्टम वाला मॉडल तो काफी मशहूर है। पहला है वासना, लस्ट।
जी, वासना या सेक्स ड्राइव, ये मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन से चलती है, सीधा मकसद सेक्सुअल पार्टनर की तलाश।
ठीक है, और दूसरा?
दूसरा है रोमांटिक आकर्षण, रोमांटिक अट्रैक्शन। ये वो चीज है जिसे हम आम तौर पर प्यार में पड़ना कहते हैं।
हाँ, वो दीवानापन, जुनून किसी एक खास इंसान के लिए।
बिल्कुल, और ये जुड़ा है डोपामाइन जैसे न्यूरोकेमिकल से।
और तीसरा सिस्टम है लगाव, अटैचमेंट।
सही, गहरा लगाव, ये वो शांत स्थिर भावना है जो लंबे समय के साथी या करीबी दोस्तों के साथ महसूस होती है। सुरक्षा, सुकून, ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जैसे हार्मोन से जुड़ी है।
कडल हार्मोन भी कहते हैं ना इन्हें?
हाँ बिल्कुल, तो ये किताब हमें प्यार के इन अलग अलग चेहरों की यात्रा पर ले जाती है, शुरू करके लक्षणों से, दिमाग के अंदर क्या हो रहा है, कौन से केमिकल्स काम कर रहे हैं, ये सब क्यों हुआ और आखिर में इसका हमारी जिंदगी में क्या मतलब है।
तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। पहला आइडिया, प्यार एक ड्राइव है, भावना नहीं। ये सुनने में तो सरल है, पर इसके मायने क्या हैं?
ड्राइव का मतलब है एक अंदरूनी ताकत जो हमें किसी लक्ष्य की ओर धकेलती है, जिस पर हमारा सचेत कंट्रोल कम होता है। जैसे प्यास लगती है तो पानी की तलाश एक मिशन बन जाता है, है ना?
हाँ बिल्कुल।
फिशर कहती हैं रोमांटिक प्रेम भी कुछ वैसा ही है। ये एक जरूरत है जो हमारे व्यवहार को, हमारे एक्शंस को गाइड करती है।
और ये सिर्फ हमारी संस्कृति में नहीं, हर जगह।
हाँ, उनकी रिसर्च यही दिखाती है, दुनिया की लगभग हर संस्कृति में जहां भी उन्होंने देखा रोमांटिक प्रेम के लक्षण पाए गए। वो तीव्र इच्छा, किसी एक के बारे में लगातार सोचना, उसके लिए कुछ भी करना, ये यूनिवर्सल है।
और fMRI स्टडीज ने इसे कन्फर्म किया, वो दिमाग वाले हिस्से VTA और
वेंट्रल टेगमेंटल एरिया VTA और कॉर्डेट न्यूक्लियस। नाम थोड़े मुश्किल हैं, पर जरूरी बात यह है कि ये दिमाग के इनाम सिस्टम का बिल्कुल सेंटर है।
इनाम सिस्टम, रिवॉर्ड सिस्टम।
हाँ, ये वो सर्किट है जो हमें मोटिवेट करता है, लक्ष्य की तरफ बढ़ाता है और किसी चीज की चाहत या क्रेविंग महसूस कराता है।
तो ये इमोशन वाले सेंटर से अलग है, जैसे खुशी या दुख वाले हिस्सों से?
हाँ, ये ज्यादा बुनियादी है, ज्यादा शक्तिशाली, ये प्रेरणा से जुड़ा है और इसमें मुख्य भूमिका है न्यूरोकेमिकल डोपामाइन की।
डोपामाइन?
जी, जब ये हिस्से एक्टिव होते हैं डोपामाइन निकलता है और हमें ऊर्जा, उत्साह, फोकस और उस चीज के लिए तीव्र इच्छा महसूस होती है जिसने इसे एक्टिव किया, यहाँ वो खास इंसान।
अच्छा, तो मतलब प्यार में पड़ना दिमागी तौर पर वैसा ही है जैसे किसी इनाम के पीछे भागना, शायद इसीलिए ये इतना जबरदस्त महसूस होता है।
हाँ, और फिशर एक कदम और आगे जाती हैं। वो इसकी तुलना नशे की लत से भी करती हैं, जैसे कोकीन की लत।
नशे से?
हाँ।
ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया?
हाँ, ये सुनने में चौंकाता है, पर वो ये नहीं कह रहे कि प्यार कोई बीमारी है। ये तुलना बस ये समझने में मदद करती है कि प्यार इतना तीव्र, इतना जुनूनी और कभी कभी इतना तर्कहीन क्यों हो सकता है।
कि क्यों लोग प्यार में ऐसे काम कर जाते हैं जो वो होश में कभी ना करे।
बिल्कुल, ये एक शक्तिशाली मोटिवेशन है, सिर्फ एक नरम एहसास नहीं।
ठीक है, तो ये ड्राइव वाली बात और रिवॉर्ड सिस्टम समझ आया। अब आते हैं उन केमिकल्स पर। डोपामीन के अलावा और कौन है?
डोपामाइन तो है ही, जो ऊर्जा, फोकस, क्रेविंग देता है। साथ में है नॉरपिनेफ्रिन।
नॉरपिनेफ्रिन?
हाँ, ये एड्रेनलिन जैसा है, दिल तेज धड़कना, पसीना आना, ज्यादा एनर्जी महसूस होना, और ये नई यादें बनाने में भी मदद करता है। शायद इसीलिए प्यार की शुरुआती यादें इतनी पक्की होती हैं।
अच्छा, और एक तीसरा केमिकल भी था, सेरोटोनिन, उसके बारे में फिशर क्या कहती हैं?
हाँ, सेरोटोनिन आम तौर पर इसे फील गुड केमिकल मानते हैं, पर फिशर का तर्क थोड़ा अलग है। वो कहती हैं कि रोमांटिक प्रेम की शुरुआती, वो जुनूनी अवस्था में सेरोटोनिन का लेवल असल में कम हो जाता है।
कम हो जाता है?
उससे क्या होता है, उसी कमी से जुनूनी विचार आते हैं, ऑब्सेसिव थिंकिंग। जैसे कोई गाना दिमाग में अटक जाता है, वैसे ही उस इंसान का ख्याल हावी हो जाता है, लगातार उसी के बारे में सोचना।
अरे हाँ, तो ये जो होता है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, हर वक्त उसी के ख्यालों में खोए रहना, कभी बहुत खुश, कभी बहुत उदास, ये सब इन केमिकल्स का खेल है।
काफी हद तक हाँ, डोपामाइन और नॉरपेनेफ्रिन का हाई और सेरोटोनिन का लो, ये जानना शायद उन लोगों के लिए थोड़ी राहत की बात हो जो प्यार में पड़कर खुद को पागल सा महसूस करते हैं।
हाँ, कि इसके पीछे ठोस न्यूरोकेमिकल कारण है, ये सिर्फ हवा हवाई बात नहीं है।
बिल्कुल, ये दिमाग की केमिस्ट्री है और ये केमिस्ट्री हमें वापस उन तीन सिस्टम्स पर ले आती है, वासना, आकर्षण और लगाव।
हाँ, तो क्या ये तीनों हमेशा साथ साथ चलते हैं?
यही तो मजेदार बात है। फिशर कहती हैं कि ये तीनों सिस्टम, वासना टेस्टोस्टेरॉन एस्ट्रोजन, रोमांटिक आकर्षण डोपामाइन नॉरएपिनेफ्रिन और गहरा लगाव ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन, दिमाग में अलग अलग सर्किट पर चलते हैं और स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं।
स्वतंत्र रूप से?
हाँ।
मतलब रिश्तों के लिए इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि इंसानी रिश्ते इसीलिए इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं। मुमकिन है कि कोई अपने जीवन साथी से गहरा लगाव महसूस करता हो, पर किसी और के लिए रोमांटिक आकर्षण महसूस करे, या किसी के लिए सिर्फ आसना हो बिना किसी गहरे जुड़ाव के। ये तीनों एक ही इंसान के लिए एक ही समय पर हों, ये जरूरी नहीं।
ये तो रिश्तों की कई उलझनों को समझने में मदद कर सकता है।
हाँ,
हमारे यहाँ भी तो कहते हैं ना, प्यार और वासना अलग है, शायद विज्ञान भी यही कह रहा है।
हाँ, कुछ हद तक, और समय के साथ एक ही रिश्ते में भी इन सिस्टम्स का बैलेंस बदल सकता है।
कैसे?
जैसे नए प्यार का जो जुनून है वो ज्यादातर आकर्षण सिस्टम का खेल है, डोपामाइन वाला। पर जैसे जैसे रिश्ता गहराता है, लगाव सिस्टम यानी ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन वाला ज्यादा हावी हो सकता है।
तो वो शुरुआती दीवानगी कम हो जाती है, पर उसकी जगह एक शांत गहरा बंधन ले लेता है।
हाँ, तो जब पुराने साथी कहते हैं कि अब पहले जैसा स्पार्क नहीं रहा, तो जरूरी नहीं कि प्यार खत्म हो गया हो। हो सकता है वो रिश्ते के लगाव वाले ज्यादा स्थिर फेज में हो।
ये समझना जरूरी है कि प्यार का रूप बदल सकता है। जुनून का लगाव में बदलना शायद रिश्ते का अंत नहीं, बल्कि उसका विकास हो।
बिल्कुल। अब एक बड़ा सवाल, ये सब क्यों? ये ड्राइव, ये केमिकल्स, ये सिस्टम, ये विकसित ही क्यों हुए? प्रकृति ने हमें प्यार करने लायक क्यों बनाया?
हाँ, इसका एवोल्यूशनरी कारण क्या था?
फिशर का जवाब हमें लाखों साल पीछे ले जाता है। उनका तर्क है कि रोमांटिक प्रेम इसलिए विकसित हुआ क्योंकि यह हमारे पूर्वजों के लिए फायदेमंद था। पहला फायदा, जैसा हमने कहा, मेटिंग एनर्जी को एक साथी पर फोकस करने में मदद।
ठीक है।
दूसरा, इससे जोड़ी बंधन को बढ़ावा मिला, पेयर बॉन्डिंग, यानी दो लोगों का लंबे समय तक साथ रहना।
और ये क्यों जरूरी था?
ये जुड़ा है हमारी इंसानी जरूरत से। हमारे बच्चे जन्म के समय बहुत असहाय होते हैं, उन्हें बड़े होने में कई साल लगते हैं।
हाँ, ये तो है।
तो इस लंबे समय के दौरान अगर दोनों माँ बाप साथ रहकर बच्चे की देखभाल करें तो बच्चे के बचने की संभावना बढ़ जाती है।
अच्छा, तो रोमांटिक प्रेम वो गोंद है जिसने मर्द और औरत को कम से कम तब तक साथ रखा जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा ना हो जाए।
हाँ, यही फिशर का मुख्य तर्क है। ये वो बायोलॉजिकल तरीका है जिससे ये सुनिश्चित होता है कि माता पिता बच्चों के शुरुआती नाजुक सालों में एक टीम की तरह काम करें।
उन्होंने 4 साल की खुजली वाली बात भी कही
हाँ,
है ना?
कोरियर इच। उनका मानना है कि ये शायद बच्चे के बचपन के इसी शुरुआती फेज से जुड़ा हो सकता है, जिसके बाद ऐतिहासिक रूप से जोड़ी टूटने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती थी। हालांकि ये और भी कई बातों पर निर्भर करता है।
ये सब तो प्यार के अच्छे पहलू हुए, पर एक कड़वा सच भी है, दिल टूटना।
जी
जब प्यार में रिजेक्शन मिलता है, तब दिमाग में क्या होता है?
हाँ, ये उनके काम का शायद सबसे इमोशनल हिस्सा है। उन्होंने उन लोगों के दिमाग को स्कैन किया जिन्हें हाल ही में ब्रेकअप का सामना करना पड़ा था, और नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे।
क्या दिखा उन स्कैन्स में?
पहली बात, उनके दिमाग का वही इनाम सिस्टम, VTA और कॉर्डेट न्यूक्लियस, अभी भी एक्टिव था। मतलब वो अब भी उस खोए हुए साथी के लिए तीव्र इच्छा, क्रेविंग महसूस कर रहे थे।
ब्रेकअप के बाद भी?
हाँ, ठीक वैसे ही जैसे कोई नशे का आदि ड्रग्स के लिए करता है। दूसरी बात, दिमाग के वो हिस्से भी एक्टिव थे जो फायदे नुकसान का हिसाब लगाते हैं। मानो दिमाग लगातार ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि क्या गलत हुआ, क्या खोया।
और सबसे हैरान करने वाली बात
ये थी कि उनके दिमाग के वो हिस्से भी एक्टिव पाए गए जो शारीरिक दर्द महसूस करने से जुड़े होते हैं।
शारीरिक दर्द? मतलब सच में?
हाँ, इसका मतलब है कि वो जो कहते हैं ना, दिल टूट गया या दर्द हो रहा है, वो सिर्फ कहावत नहीं है। दिमाग के लिए ये दर्द उतना ही असली है जितना हाथ कटने या जलने का दर्द।
बाप रे, ये जानना तो उन लोगों के लिए कितना जरूरी है जो इस तकलीफ से गुजरते हैं और लोगों ने कहते हैं अरे भूल जाओ।
बिल्कुल, ये उनके अनुभव को एक वैज्ञानिक मान्यता देता है। ये समझाता है कि ब्रेकअप इतना तकलीफ दे क्यों होता है। ये एक तरह से नशे की लत छोड़ने जैसा है, क्रेविंग भी और दर्द भी।
वाकई ये बहुत पावरफुल जानकारी है। तो चलिए, अब तक की सारी बातचीत के जो मुख्य पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार समेटते हैं। सबसे अहम बातें क्या रहीं?
मेरे हिसाब से पहली और सबसे बड़ी बात, प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, एक बुनियादी ड्राइव है, एक जरूरत।
हाँ, ये समझना जरूरी है, खासकर वो जो असहायता महसूस होती है प्यार में।
दूसरा, इस ड्राइव का एक स्पष्ट न्यूरोकेमिकल आधार है, डोपामाइन, नॉरपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन। ये पागलपन भरी भावनाओं को समझाते हैं।
तीसरा, वो 3 प्रणालियों वाला मॉडल, वासना, आकर्षण, लगाव, ये रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की चाबी है। ये समझाता है कि क्यों अलग अलग लोगों के लिए अलग भावनाएं हो सकती हैं और रिश्ते कैसे बदलते हैं।
हाँ, और शायद भारत जैसे देश में जहाँ अरेंज्ड मैरिज भी होती है, ये मॉडल समझा सकता है कि कैसे लगाव पहले आ सकता है और आकर्षण बाद में, या लंबे रिश्तों में कैसे लगाव जुनून पर हावी हो जाता है।
और चौथा, प्यार का विकासवादी उद्देश्य, बच्चों की परवरिश के लिए जोड़ी बंधन, ये एक बड़ा पर्सपेक्टिव देता है।
और ये सब जानने से प्यार का जादू कम नहीं होता, बल्कि शायद हमें खुद के और दूसरों के प्रति ज्यादा समझदार और दयालु बनाता है।
बिल्कुल, जब हम जानते हैं कि दिल टूटने का दर्द असली है या नए प्यार का जुनून स्वाभाविक है, तो हम इन सिचुएशंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं।
हाँ, अब इस किताब में कुछ बातें ऐसी हैं जो वाकई याद रह जाती हैं, कुछ खास संदेश या कोट्स।
एक तो मुझे हमेशा याद रखता है वो यही है, अगर मैं उसे अपने शब्दों में कहूं, प्रेम एक भावना नहीं बल्कि एक बुनियादी प्रेरणा है, भूख या प्यास जैसी। ये प्यार को जरूरत की कैटेगरी में रखता है।
और दूसरा, वो नशे वाली तुलना, प्यार में दिमाग के वही हिस्से एक्टिव होते हैं जो नशे की लत में होते हैं। ये तीव्र इच्छा की स्थिति है, ये प्यार की जबरदस्त पकड़ को समझाता है।
हाँ, और तीसरा वो तीन सिस्टम वाला फर्क, वासना, रोमांटिक आकर्षण और लगाव, अलग अलग ब्रेन सिस्टम है। ये रिश्तों की उलझनों को समझने के लिए बहुत जरूरी है।
तो अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, इस सारे ज्ञान का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फायदा, कैसे इस्तेमाल करें इसे?
कई तरीकों से, जैसे अगर कोई नए नए प्यार में है और उसे लगता है कि वो पागल हो रहा है, तो वो समझ सकता है कि यह काफी हद तक नॉर्मल है। डोपामाइन और कम सेरोटोनिन का असर, शायद थोड़ी शर्मिंदगी कम हो।
और जो लोग लंबे रिश्ते में हैं,
उनके लिए ये समझना कि जुनून का शांत होकर गहरे लगाव में बदलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकती है, ये मानने के बजाय कि प्यार मर गया, वो रिश्ते के इस नए स्थिर दौर को संजोना सीख सकते हैं।
हाँ, और उसे बनाए रखने के लिए कोशिश कर सकते हैं।
बिल्कुल, और ब्रेकअप से गुजर रहे लोगों के लिए,
उनके लिए ये जानना कि वो एक तरह के विड्रॉल से गुजर रहे हैं बहुत मददगार हो सकता है। ये नो कॉन्टैक्ट रूल जैसी स्ट्रैटेजी के पीछे का साइंस बताता है, दिमाग के क्रेविंग सिस्टम को शांत होने का मौका देना।
और ये भी कि जो दर्द वो महसूस कर रहे हैं वो असली है और समय के साथ कम होगा।
डेटिंग करते समय भी ये जानकारी काम आ सकती है। सिर्फ शुरुआती केमिस्ट्री पर ध्यान देने के बजाय हम शायद लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी जैसे शेयर्ड वैल्यूज पर भी ध्यान देने के लिए सोचें।
हाँ बिल्कुल, ये हमें थोड़ा ज्यादा इन्फॉर्म्ड बना सकता है। खैर, अब अंत में इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे सरप्राइजिंग बात क्या रही?
मेरे लिए तो वो दिल टूटने भी बायोलॉजिकल रियलिटी कि ये दर्द दिमाग में फिजिकल पेन की तरह रजिस्टर होता है, ये बहुत चौंकाने वाला था। और वो तीन सिस्टम वाला मॉडल भी बहुत प्रैक्टिकल लगा। आपके लिए?
मेरे लिए ये आइडिया कि प्यार एक ड्राइव है बहुत गहरा था। ये समझाता है कि क्यों इसे कंट्रोल करना इतना मुश्किल होता है। और ये जानना कि विज्ञान प्यार को खत्म नहीं करता बल्कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और सुंदरता की तारीफ बढ़ाता है, ये भी एक अहम सीख है।
तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर प्यार वाकई एक ऐसी ड्राइव है जिसकी जड़ें हमारे केमिकल्स और विकास में हैं, तो फिर हम किससे प्यार करते हैं? इस पर हमारा कितना सचेत नियंत्रण है? क्या हम चुनते हैं या चुने जाते हैं?
और ये समझ हमारे रिश्तों के प्रति हमारे नजरिए को, हमारी उम्मीदों को और शायद हमारी जिम्मेदारियों को कैसे बदल सकती है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।